नवम दिवस
उप का अर्थ है समीप और वास का अर्थ है रहना, तो मन से प्रभु के समीप रहना ही सच्चा उपवास है। बिरला मंदिर में आप सबने 9 दिन के ये उपवास किए हैं, आज इसका आखिरी दिन है। इस जीव के पास इस संसार से भिन्न और कोई स्थान नहीं है, यहीं पर रहकर और ज्ञान साधना के द्वारा उसे अपने जीवन के चरम लक्ष्य को पहचानना है। और जिसके पास दिव्य दृष्टि है उसकी सृष्टि भी दिव्य है, जिसकी सृष्टि दिव्य है वहाँ कपट का कोई काम नहीं, अर्थात वहाँ कुंठा तो है ही नहीं। और जहाँ कुंठा नहीं है वहीं वैकुंठ है। तो जब दिव्य दृष्टि होगी तो यही संसार आपके लिए वैकुंठ बन जाएगा। हमारे मन की वासनाओं को और हमारे मन की मान्यताओं को हमें अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा दूर करना है। संसार में मन बार बार हमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब वासनाओं की ओर ले जाता है। और जो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, वह सीधा दिखाई नहीं देता। और यह मन और हमारे ऊपर पड़ी हुई माया शक्ति का जो आवरण है वह हमें आत्म तत्व तक पहुंचने नहीं देता। आत्मा के तत्व को जानने के लिए सत्संग ही करना होता है, और सत्संग श्रवण से ही हम आत्म तत्व तक पहुंच सकते हैं। आज आखिरी दिन है, इसीलिए मैं समय ज्यादा नहीं लूंगी। महाराज श्री से प्रार्थना करती हूँ कि वे अपने वचनामृत से हम सबको शुभ आशीर्वाद दें, अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा दें।
छिद्रघटोदरस्थित महा दीप प्रभास्वरम् ज्ञानम् यस्य चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दति जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्याहुरागमविदः परिपूर्णशक्तेरंशे कियत्यपि निविष्टममुं प्रपञ्चम् तस्मै तमालरुचिभासुरकन्धराय नारायणी सहचराय नमः शिवाय अज्ञानान्तर्गहनपतितानात्मविद्योपदेशैस्त्रातुं लोकान् भवदवशिखात्तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिर्शङ्कराचार्यरूपा पदवाक्यप्रमाणज्ञैर्दीपभूतैः प्रकाशितम् ब्रह्मवेदरहस्यं यैस्तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् ब्रह्मवेदरहस्यं यैस्तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षवीर्यज स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्निस्तनुर्विषेमहि देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो जरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः। उस चरम लक्ष्य का विचार कर रहे थे जिसको प्राप्त करके और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। उस ज्ञेय तत्व का निरूपण करते हुए भगवान कहते हैं, अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम्। यद्यपि वह परब्रह्म परमात्म देव प्रत्यगात्मा हमेशा ही स्वरूप से बटता नहीं है, अविभक्त रहते हुए बिना बटे हुए ही शरीरों के कारण विभक्त मिवच स्थितम बटे हुए की तरह लगता है। ठीक जिस प्रकार से आकाश एक अखंड आकाश रहते हुए ही घड़े में लगता है घटाकाश है, सिकोरे में लगता है सिकोरे का आकाश है, परंतु उस आकाश का कोई टुकड़ा होकर के घड़े में आ जाता हो ऐसा नहीं। घड़े के कारण लगता है परंतु है वह एक ही। ठीक इसी प्रकार से एक ही वह चेतना सर्वत्र विद्यमान है। शरीर अलग अलग होने से ऐसा लगता है मानो हरेक शरीर में अलग अलग चेतन होवे। है वहां एक ही अखंड, शरीरों के कारण उसमें कोई फर्क आता नहीं। क्योंकि हमारी नजर हमारी दृष्टि शरीरों की तरफ है, इसलिए हमको लगता है प्रत्येक शरीर के साथ चेतन अलग अलग है। यह चेतन अलग अलग नहीं है क्योंकि भूत भर्तृ प्रभ विष्णु ग्रसिष्णु च यही परब्रह्म परमात्म देव इन सब शरीरों को उत्पन्न करने वाला है। शरीरों को उत्पन्न करता है इसलिए लगता है मानो शरीर वाला चेतन उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार से उन सब की स्थिति रखता है, उन सब का भरण करता है, इसलिए लगता है मानो हरेक में अलग अलग है। और अंत में उन सब को ग्रस्त कर लेता है, कवलित कर लेता है, अपने में लीन कर लेता है, परंतु ये सब होते हुए भी वह तो वैसा ही बना रहता है। ठीक जिस प्रकार से पृथ्वी में बरसात आती है, घास पेड़ पौधे उग जाते हैं, जमीन से उगे हैं, पुष्ट किससे होते हैं तो उस धरती से ही पुष्ट होते हैं, वहीं से उनको अपना भोजन पानी सब कुछ मिलता है। और अंत में जब यह सूख जाते हैं तो ये सारे पेड़ पौधे घास इत्यादि सारे के सारे पुनः इस धरती में ही लीन हो जाते हैं, धरती से ही निकले, धरती से ही इनका भरण पोषण हुआ, अंत तो गत्वा धरती में लीन हो गए। धरती से अलग तो इनकी कोई सत्ता है नहीं, इस सारे प्रकरण में पहले तो भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, ज्ञेय को बताएंगे, उसके बाद ज्ञेय को बतलाते रहे। यहां आकर के पहली बार ज्ञेय शब्द की पुनरावृत्ति की है, भूत भर्तृ च तद्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। इसके पहले कहीं ज्ञेय अलग से कहा नहीं, क्योंकि परमात्मा का जो ये सृष्टि स्थिति लय का रूप है, ये परमेश्वर का विशेष लक्षण है। जिस समय महर्षि भृगु वरुण के पास जाकर के पूछते हैं, मुझे आप परब्रह्म परमात्म तत्व का उपदेश करें, तो महर्षि वरुण यही जवाब देते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। जिससे यह सारा संसार पैदा होता है, जिसके द्वारा ये सारा संसार जीवित रहता है, और अंत में यह सारा संसार जिसमें लीन हो जाता है, बस वही ब्रह्म है। ब्रह्म सूत्रों में भी जब ब्रह्म के लक्षण का विचार प्रारंभ हुआ तो भगवान बादरायण ने वहां पर भी जन्माद्यस्य यतः, समग्र सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय जिस एकमात्र कारण से है, यहां पर भी भगवान ने इस चीज के ऊपर जोर देने के लिए यहां पुनः ज्ञेय शब्द का आवर्तन कर लिया, आवृत्ति कर ली, फिर से कह दिया। क्योंकि इसका जो निरंतर चिंतन है, प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति हो रही है, स्थिति है या लय हो रहा है, उसमें उसको देखने का अभ्यास करना है। एकमात्र वही जगत को उत्पन्न स्थिति और लय करने वाला है, उसके सिवाय और कोई नहीं है, ये रात दिन याद रखने की चीज है। इस बात को याद कैसे रखें, भगवान कहते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः, इसको कैसे याद रखें, तो ये ज्योतियों की ज्योति है, प्रकाशों का, प्रकाश है रोशनी की, रोशनी है क्या मतलब, रोशनी की रोशनी है। आचार्य शंकर कहते हैं सूर्याद्यैरर्थभानं नहि भवति पुनः। सूर्य के द्वारा पदार्थों का तो भान होता है, सूर्य के प्रकाश में हमको दूसरी चीजें तो दिखती हैं, परंतु सूर्य तो सूर्य के प्रकाश से नहीं दिखता। घड़ा देखने के लिए, किताब बांचने के लिए तो सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, सूर्य की रोशनी होवे तब किताब बांचे, परंतु सूर्य की रोशनी को देखने के लिए सूर्य की रोशनी काम नहीं देती, आंख की रोशनी चाहिए। जो व्यक्ति अंधा है, जेठ के महीने में दिन के 12 बजे उसको बाहर ला करके भी खड़ा कर दो तो उसको क्या सूर्य का प्रकाश दिख सकता है। सूर्यात् सूर्य प्रतीतिर् न भवति सहसा नापि चंद्रात्। सूर्य की प्रतीति सूर्य से नहीं आंख से होगी, इससे पता लगता है कि जो जिस जाति का पदार्थ है उससे भिन्न जाति के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। सूर्य का जड़ प्रकाश है उसको जानने के लिए आंख का प्रकाश चाहिए, आंख के प्रकाश को जानने के लिए मन का प्रकाश चाहिए। कभी आंख के डॉक्टर के पास जाओ, चिकित्सक के पास जाओ, आंख की परीक्षा करता है। कैसे परीक्षा करता है? तुम्हारी आंख के सामने कांच रख के कहता है कैसा दिखता है बताओ। उससे को मैं काहे को बताऊं, फीस तो तुम लेगा, तुम देख कैसा दिखता है। तो हमारी आंख की रोशनी को वो अपने आंख की रोशनी से नहीं देख सकता, आंख की रोशनी को देखने के लिए मन की रोशनी चाहिए। हमारा मन हमारी आंख की रोशनी को पहचानता है, साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। सूर्य की रोशनी को जानने के लिए आंख की रोशनी चाहिए, आंख की रोशनी को जानने के लिए मन की रोशनी चाहिए, आगे मन को जानने के लिए किसकी रोशनी चाहिए। मन को भी जानते हो, कहते हो महाराज आज प्रातः काल ध्यान करने बैठा, घंटा भर बैठा रहा, परंतु क्या बताऊं ये मन बिल्कुल इधर उधर दौड़ता रहा, बिल्कुल ध्यान में बैठा ही नहीं। मन ध्यान में नहीं बैठा इस बात को किसने जाना? तुमने जाना। मन को जानने के लिए तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है, आगे तुम अपने आप को जानो इसके लिए किसी दूसरे रोशनी की जरूरत पड़ती है क्या? इसलिए कहा ज्योतिषामपि तज्ज्योति ही, सारी रोशनियों की अंतिम रोशनी प्रत्यगात्मा तुम हो। तमसः परमुच्यते, उसके अंदर कभी भी अंधकार नहीं आता। मैं अपने को नहीं जानता ऐसा कभी नहीं होता, घोर से घोर अंधेरे में बैठे हुए हो, अंधे भी हो, पागल भी हो, फिर भी तुम जानते हो कि मैं हूं। चाहे मन काम न करे पागल हो, चाहे आंख काम न करे, चाहे वहां कोई दूसरी रोशनी न हो, लेकिन मैं हूं। इस बात को जानने के लिए किसी रोशनी की, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं तमसः परमुच्यते। यह जो ज्ञान का प्रकाश है, इस ज्ञान के प्रकाश से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, इसी में सब स्थित है, इसी में सब लीन होता है। क्योंकि कोई चीज उत्पन्न होती है तो भी ज्ञान है, जाना ही तो जाता है कि उत्पन्न हुई। कोई चीज स्थित है, पुष्ट हो रही है, वो भी ज्ञान है। कोई चीज नष्ट हो गई, उसका भी ज्ञान ही है। अब ज्ञान के अंदर एक बात याद रखनी चाहिए। सामान्यतः जहां ज्ञान होता है वहां दो चीजें होती हैं, बुद्धि की सहायता से ज्ञान होता है और बुद्धि का जो प्रकाशक है उसका ज्ञान होता है। प्रायः मनुष्य बुद्धि से जो ज्ञान होता है उसको ही ज्ञान समझ लेता है। इसलिए आचार्य कहते हैं बुद्धेर्वृत्तौ ज्ञानता तावदेका, प्रत्यग बोधे ज्ञानता का चिदन्या। बुद्धेर वृत्तौ, बुद्धि की वृत्ति को जब तुम जानते हो उसको भी ज्ञान कहते हैं। साधारण भाषा में जब कहते हैं ये आदमी बड़ा ज्ञानी है, विद्वान है, उस समय तुम्हारा तात्पर्य होता है इसकी बुद्धि के अंदर बहुत सी वृत्तियां हैं, इसने बुद्धि से बहुत सी चीजों को जाना है। जब कहते हो ये आदमी बड़ा ज्ञानी है तो उसके उस आत्मा के ज्ञान को लेकर के नहीं कह रहे हो, वो तो सब जगह एक जैसा है। बुद्धि की वृत्ति में एक ज्ञानता है, प्रत्येक बोधे ज्ञानता काचिदन्या। जो अपना ज्ञान है, प्रत्येक ज्ञान है, वो ज्ञानता कुछ और है। ये है स्वप्रकाश रूपता, और बुद्धि के अंदर केवल ज्ञान की अभिव्यंजकता है, ऐसे समझ लो। लोक में कहते हैं ये हीरा बड़ा तेजस्वी है, और ये भी कहते हैं ये रोशनी बड़ी तेज है। हजार नंबर का लट्टू लगा हो तो कहोगे ये रोशनी बड़ी तेज है, और हीरे को भी कहते हो हीरा बड़ा तेज है, तेजस्वी है, इस हीरे में बड़ा तेज है। लेकिन दोनों तेजों में फर्क है। हीरा तेजस्वी है, हीरे में तेज है, इसका मतलब है वह रोशनी को ज्यादा मात्रा में लेकर के उसको प्रतिबिंबित करता है। ऐसा नहीं समझ लेना कि अंधेरे के अंदर बैठे हुए हो, अलाती तुम्हारी काम नहीं कर रही, टॉर्च तुम्हारा काम नहीं कर रहा, तो अपनी हीरे की अंगूठी से तुमको रास्ता दिख जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। हीरे की तेजस्विता इस बात की तेजस्विता है कि रोशनी को लेकर के, अधिक मात्रा में रोशनी को अपने में लेकर के वह प्रतिबिंबित करता है, इसलिए और चीजों की अपेक्षा वो ज्यादा जगमगाता है। परंतु रोशनी होने पर, रोशनी का जो अपना प्रकाश है वो अपना प्रकाश है, वो किसी दूसरे के कारण नहीं है। ठीक इसी प्रकार बुद्धि के अंदर जो जगमगाहट है वो इस बात की है कि बुद्धि उस आत्मा की रोशनी को ज्यादा मात्रा में लेकर के प्रकाशित कर सकती है, बस इतने में ही उसकी जगमगाहट है। परंतु जो आत्मतत्व है उसकी तो जगमगाहट, उसकी तो रोशनी अपनी खुद की है। बुद्धि को इतनी बड़ी प्रशंसा मिलती है, उसको भी ज्ञान कह दिया जाता है। इतनी बड़ी प्रशंसा मिलने का कुछ विशेष कारण है। वह बुद्धि परमात्मा को विषय करने में समर्थ होने से जीव का कल्याण कर सकती है, ये उसकी विशेषता है। आचार्य शंकर मन की विशेषता को बतलाने के लिए मन का जो व्यापक तत्व है चंद्रमा, उसके द्वारा कहलवाते हैं। चंद्रमा कहता है मेरे में कोई गुण नहीं है। वक्राकार कलंकी जड़तनुरहमप्यंघ्रि सेवानुभावात् उत्तंसत्वं प्रयात सुलभतर घृणास्यन्दिनश्चन्द्रमौलेः। मैं टेढ़ा हूं, वक्राकार, टेढ़ी चीज को बुरा माना जाता है। कलंकी, मेरे ऊपर कलंक भी लगा हुआ है, बीच में बड़ा भारी काला दाग होता है। वैसे भी चंद्रमा पर कलंक लगा हुआ है, ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, संकेत में समझ लेना। दक्ष प्रजापति ने 27 लड़कियों का ब्याह किया चंद्रमा के साथ, परंतु वो एक ही रोहिणी के प्रति पक्षपाती था, ये उसके ऊपर कलंक लगा। वक्राकार कलंकी जड़ तनु, और मैं जड़ हूं, मेरा शरीर जड़ ही है। वर्तमान काल में भी लोग कहते हैं वहां जाकर के हमको कहीं कोई चेतन चीज नहीं मिली, हम वहां से पत्थर वत्थर उठा करके लाए। अब कहते हैं ये तीनों दुर्गुण मेरे में हैं, परंतु ऐसा भी अहम अपि, ऐसा भी मैं, अंघ्रि सेवा अनुभावात्, मैंने भगवान शंकर के चरणों की सेवा की, इसलिए उत्तम सत्वम प्रयातः, भगवान शंकर सारे संसार से ऊपर हैं, उन्होंने मेरे को अपने भी ऊपर, मुकुट के ऊपर रख दिया। इतना दोषी होने पर भी सारे संसार से ऊपर जो भगवान शंकर है उनके भी मुकुट पर मैं पहुंच गया, ये कोई मेरी विशेषता नहीं है। सुलभतर घृणास्यन्दिनश्चन्द्रमौले, भगवान शंकर के अंदर दया इतनी ज्यादा है कि जो उनके चरणों में जाए वो जैसा भी होवे उसको वो श्रेष्ठ बना देते हैं। इसलिए चंद्रमा कहता है तत्सेवन्ताम् जनौघा शिवमिति निजयावस्थयैव ब्रुवाणम् वंदे देवस्य शंभोर मुकुट सुघटितम् मुग्धपीयूषभानुम्। इस बात को चंद्रमा को कहना नहीं पड़ता, वहां रहते हुए ही वह यह संदेश देता है तत्सेवंतम जनौघा शिवमिति, उस शिव का ही है, प्राणियों आप लोग सेवन करो, मेरी अवस्था को निज अवस्था मेरी अवस्था से ही अनुमान कर लो। अब चंद्रमा जैसा हमने कहा बुद्धि ही है, मन ही है, मन का अभिमानी समष्टि चंद्रमा है, चंद्रमा मनसो जाता है वेद कह ही रहा है। अब ये मन भी कैसा है, वक्राकार मन। हम लोगों का कितना कुटिल है इसको बताने की जरूरत नहीं, कभी भी अपने मन को देखो तो पता लग जाएगा। हमेशा ये कुछ न कुछ कुटिल बात सोचता रहता है, सामने वाला कोई अच्छी से अच्छी बात भी कहेगा तो ये मन कहेगा इस आदमी का मतलब कुछ और है। वक्राकार कलंकी, दुनिया भर की वासनाओं का कलंक ये अपने ऊपर लगाता ही रहता है, न जाने कितनी वासनाएं इसमें भरी हुई हैं। जड़ तनु हूं, पंच महाभूतों से बना हुआ है, जड़ तो है ही, परंतु यह भी जब भगवान शंकर का चिंतन करता है तो अंततो गत्वा ब्रह्माकार वृत्ति बना करके उत्तन सत्वं प्रयातः कहा जाता है। अरे मनुष्य को मोक्ष देने वाला ये मन ही तो है, परमेश्वर का सेवन करने से इसकी यह स्थिति बन जाती है। इसलिए भगवान ने कहा कि इस मन के अंदर जब हम इस मन से शिव का चिंतन करते हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः, मन से जब हम जड़ विषय का चिंतन करते हैं तब तो बंधन में जाते हैं, और उसी मन से उस मन को प्रकाशित करने वाला उस मन को जानने वाला जो शिव है उसका चिंतन करते हैं तो उत्तन सत्वं प्रयातः। कहां इसका अनुभव, तो ज्ञादम गेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य अधिष्ठितम्। जो पहले बतलाए थे गई बार ज्ञानम अर्थात ज्ञान के सारे साधन, जो यहां गेय बातें बतलाई, और जब ये वृत्ति बन करके ज्ञान से हमको साक्षात अनुभव होता है ज्ञानगम्यम। आचार्य शंकर लिखते हैं ज्ञेयमेव ज्ञातम सत ज्ञानगम्यम, ज्ञेय ही जब ज्ञात हो जाता है तब उसको ज्ञानगम्य कहते हैं। प्रारंभ में ही बतलाया था अज्ञात ब्रह्म ज्ञेय ब्रह्म ज्ञात ब्रह्म, तीनों ब्रह्म ही है। जब तक परमात्मा के विषय में हमको कोई चेतना है ही नहीं तब तक यह संसार अज्ञात ब्रह्म है। जब हम साधक बन करके साधना में लगे तब हम उस ब्रह्म को जानना चाहते हैं तो ये सारा संसार ज्ञेय ब्रह्म है, और जब हमको उसका साक्षात्कार हो जाता है तो वही ज्ञानगम्य है, ये सारी की सारी चीजें हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में ही स्थिर है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम येयम चोक्तम समासतः मद्भक्तये तद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, मैंने पहले ज्ञान का निरूपण कर दिया, अब ज्ञेय का निरूपण कर दिया संक्षेप में। परंतु ये जो कहा ज्ञान गम्यम, ये ज्ञान गम्य किसको होगा? बतला तो मैंने दिया, परंतु ये अनुभव में परिणत कब होगा? तो कहा मद भक्त ये तद विज्ञाय, जो परमेश्वर से अनुपम प्रेम करेगा, जो मेरे से प्रेम करेगा, वही इसका साक्षात अनुभव कर सकेगा। और जब इसका अनुभव कर लेगा तो मद्भावायोपपद्यते, वो मेरा ही स्वरूप हो जाएगा। ये जो परमात्मा के लिए असीम प्रेम है, ये साधन बनता है। कश्मीर देश के अंदर पामपुर नाम का ग्राम है, वहां आसपास में केसर की बड़ी खेती होती है। वहां पर आज से 750 वर्ष पूर्व, समझ लो 1343 में एक लड़की पैदा हुई। उस समय वहां पर राज्य मुसलमानों का चल रहा था, काफी राजनीतिक उथल पुथल का समय था। ब्राह्मण के घर में वह लड़की पैदा हुई। उस युग के अंदर छोटी उम्र में ब्याह कर दिया जाता था, 12 साल की उम्र में उस लड़की का ब्याह हो गया। ससुराल में पहुंची, ससुराल में उसकी सास सौतेली सास थी, अर्थात पति की जो असली मां थी वो मर चुकी थी, दूसरी मां थी। तो पति की दूसरी मां हुई सौतेली मां, तो इसकी वो सौतेली सास हुई। स्वाभाविक रूप से उसको इसके प्रति सद्भाव नहीं था, इसलिए हमेशा इसको किसी न किसी प्रकार का क्लेश ही देती रहती थी, कष्ट ही देती रहती थी। ये कभी शिकायत नहीं करती थी। दूसरों को पता न लगे, इसलिए जब वो उसको भोजन परोसती थी तो पहले एक पत्थर रख देती थी, कश्मीर में लोग चावल खाते हैं, और उस पत्थर के ऊपर चावल को अच्छी तरह से ढांक देती थी। वो लोग सब समझते थे ये बहुत खाती है, उनको पता नहीं कि इसके नीचे तो पत्थर रखा हुआ। लेकिन ऐसी परिस्थितियों को भी चुप होकर के सहन करती रही। ये जो तपस्या है, ये जीवन में बड़ी आवश्यक है। जो व्यक्ति हमेशा परिस्थितियों को बदलने में लगा रहता है, उसका तो सारा ध्यान उसी तरफ चला जाता है। और जो परिस्थितियों को सहन करने का अभ्यास डालता है, वही किसी उच्च चीज की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए न उसको कभी अपने सास पर क्रोध आता था, न कभी अपने माता पिता पर क्रोध आता था, न उसको किसी से कोई शिकायत थी, चुपचाप उसको सहन करते रहना। इसीलिए संसार के अंदर अनेक सुधारवादी गतिविधियां हुई हैं भारत में भी और भारतेतर देशों में भी, लेकिन जितने सुधारवादी हुए हैं वो कभी परमात्मा के साक्षात्कार के रास्ते में नहीं जा पाए, वो केवल सुधार ही करते रहे और उनका सुधार अंत में बिगाड़ ही सिद्ध हुआ। ये दोनों अलग मार्ग हैं। संसार के अंदर जो हेय और उपादेय बुद्धि रखेगा वो अहेय अनुपादेय ब्रह्म तत्व को कभी पा नहीं सकता, और जो अहेय अनुपादेय ब्रह्म तत्व को पकड़ना चाहता है वो हेय और उपादेय की दृष्टि कर नहीं सकता। इसीलिए जितनी प्राचीन परंपराओं में परमात्म संबंधी अनुभव और परमात्म संबंधी चीजें आती हैं भारतवर्ष में, भारतेतर देशों में भी, उतना जितने ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट और रेनेसांस मूवमेंट होते हैं इसमें कुछ नहीं होता। एक दिन शिवरात्रि का दिन था, कश्मीर में शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। ये वितस्ता के तट पर बर्तन मांजने के लिए गई हुई थी, बर्तन लेके गई थी, झेलम जिसको कहते हैं उर्दू वाले, वहीं पर कोई पड़ोसन भी आई हुई थी। उसने कहा आज तो शिवरात्रि का दिन है, आज तो तेरी पांचों भीमें होगी, अर्थात खूब माल खाने को मिलेगा, बढ़िया बढ़िया। पद्मा अंदर से दुखी तो थी, उसने कहा मेरे तो शालिग्राम की बटिया भली, चाहे जितना भी भोजन मिले मुझे तो वो पत्थर ही मिलना है, मेरे लिए तो शालिग्राम की बटिया ही भली। पड़ोसिन ने पूछ लिया क्यों, क्या बात है, शालिग्राम की बटिया से तुम्हारा क्या मतलब। उसने सुना दिया, ये औरतों के घाट पर थे, उसके पास में ही आदमियों का घाट था, वहां पर ससुर खड़े थे, उन्होंने सारी बातें सुनी। घर में आकर के सास को बहुत डांटा उन्होंने, स्वाभाविक था, पर फल उल्टा ही निकला। सास उसके साथ और ज्यादा अत्याचार करने लगी, अब लड़के को भी सिखाने लगी यह तो डाकिनी है, रात में सिंह पर बैठ करके जाती है, किस किस को खा के आती है, ऐसी ऐसी बातें। उसके धैर्य का अंत हो गया। अब उसने सोचा इस सीमा को तोड़ करके असीम की तरफ ही मिलने को जाना है, तो सब कुछ छोड़ करके वहां से चली। भिन्न भिन्न गांवों के अंदर भगवान शंकर के दर्शन करते हुए घूमना और उनकी कीर्ति का कथन करना, उनका ध्यान करना, उनकी पूजा करना। अंत में एक बार भगवान शंकर का उसको दर्शन हो गया। भगवान शंकर के दर्शन के साथ ही उसको ये समझ में आ गया कि संसार सारा प्रकृति का ही खेल है। जब प्रकृति का ही खेल है तो इसमें किसकी शर्म करनी है। तो अब उसने वस्त्र पहनना भी छोड़ दिया, बिल्कुल दिगंबर वेश में, अवधूत वेश में घूमने लगी। ना भोजन के लिए कोई चिंता, जबरदस्ती किसी ने मुंह में डाल लिया तो खा लिया, न वस्त्र की चिंता। छेड़ने वाले कई बार छेड़ते थे, अरे नंगी क्यों घूमती है, तो वो हंस के कहती थी संसार में कोई पुरुष तो है ही नहीं, सारी की सारी प्रकृति की बनी हुई जितनी शक्लें हैं सब प्रकृति की बनी होने से औरत ही औरत है, औरत के सामने औरत का क्या कपड़ा पहनना। उसका तात्पर्य लोग क्या समझे, लोग हंसते। इस प्रकार उसने परमात्मा के इस रूप का तो साक्षात्कार कर लिया, परंतु जो कालातीत दिगतीत रूप है, विश्वाधिक रूप है, उसका साक्षात्कार करना अभी बाकी था। दक्षिण भारत में उस समय विश्वेंद्र सागर नाम के बड़े ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे, उनको भगवान विश्वनाथ ने प्रेरणा की, वहां योग्य शिष्य है वहां जाकर के उसको तत्वज्ञान का उपदेश करो। जब हमारे में योग्यता आती है तो भगवान स्वयं ही उपदेश के लिए इंतजाम कर देते हैं, गुरु की प्राप्ति हो जाती है। गुरु ढूंढने से नहीं मिला करते, कारण यह है कि गुरु कौन है इसकी परीक्षा तुम कैसे कर सकते हो। गुरु ही शिष्य को ढूंढ लेता है। विश्वेंद्र सागर वहां से चल करके भगवान की प्रेरणा से आए। जैसे ही विश्वेंद्र सागर को देखा, पद्मा जोर से चिल्लाई, अरे आदमी आ गया, आदमी आ गया, पुरुष है ये, पुरुष है। कश्मीर के अंदर रोटी बनाने के तंदूर लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े तंदूर, पुरुष आ गया, पुरुष आ गया कहकर के वो उसी तंदूर में कूद गई। विश्वेंद्र सागर समझ गए, पहचान लिया उन्होंने, उसको आवाज दी कि अरे बाहर आओ। तो अंदर अग्नि रूप से जो भगवान थे उन्होंने उसको दिव्य वस्त्र पहना दिए, दिव्य वस्त्र पहन करके वो बाहर आई। अब विश्वेंद्र सागर जी ने उसको धीरे धीरे उपनिषदों को समझाना शुरू किया। वह जो विश्वाधिक तत्व है जिसको यहां पर ज्ञेय शब्द से कहा, उसका उन्होंने विस्तार से निरूपण किया। धीरे धीरे श्रवण के फलस्वरूप उसकी ज्ञान निष्ठा दृढ़ हो गई। एक बार कई शिष्य बैठे थे, गुरुजी ने प्रश्न किया, कः प्रकाशः श्रेष्ठतमः तीर्थश्च कख्यातिमान संबंधिनाम उत्तमः कः भूमानंदस्य साधनः। कः प्रकाशः श्रेष्ठतमः, सबसे श्रेष्ठ प्रकाश कौन सा है। लोगों ने तरह तरह का जवाब दिया। अंत में जब उससे पूछा तब उसने कहा, काश श्रेष्ठो ब्रह्मज्ञानम्, परमात्म ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। दूसरा प्रश्न था, सबसे ख्याति वाला सबसे प्रधान तीर्थ कौन सा है? उसका उसने जवाब दिया, तीर्थस्तु तत्र लीनता। उस ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर के रहना यही श्रेष्ठ तीर्थ है। तीसरा प्रश्न था, सारे संबंधियों में श्रेष्ठ कौन है? तो शिव संबंधिनाम श्रेष्ठ, वह शिव परमेश्वर ही सारे संबंधियों में श्रेष्ठ है। उस परम आनंद का साधन क्या है? चौथा प्रश्न था। तो तन्मयतानंद साधन, उसमें तन्मय हो जाना यही आनंद का साधन है। अब गुरुजी ने समझ लिया कि इसकी निष्ठा पूर्ण हो गई। उन्होंने उसका नाम लल्लेश्वरी रखा। बाद में वो सर्वत्र लोगों को तत्वज्ञान का उपदेश देते हुए घूमती रही। अनेक श्लोकों के अंदर, वहां की भाषा के अंदर उसने लोगों को तत्व का उपदेश दिया। प्रायः वह यही कहती थी कि मन एक गधा है, इसको वश में रखो, नहीं तो केसर की क्यारियों को चर जाएगा। क्योंकि जहां ये पैदा हुई थी वहां केसर बहुत पैदा होती थी। इस मन को वश में करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो केसर की खेती करने के लिए ये क्षेत्र तुमको मिला है, ये शरीर मिला है, मनुष्य शरीर केसर की खेती करने के लिए है। लेकिन इस सारे मनुष्य शरीर के अंदर होने वाली जो योग्यताएं हैं उनको चर जाएगा यदि मन को तुमने खुला छोड़ दिया। क्योंकि ये अपना भला बुरा समझता नहीं, ये तो गधा है। इसलिए भगवान ने कहा कि इसको छोड़ करके जो लल्लेश्वरी की तरह मेरे को अपने प्रेम का एकमात्र आधार बनाएगा, मद भक्त एतद् विज्ञाय, उसी को इसका अनुभव हो सकेगा, अन्यथा नहीं। और कब तक करना है? तो मद्भावायोपपद्यते, जब तक परमात्म भाव में स्थिर न हो जाए। तो कई बार आप लोगों को ज्ञान के पूर्व जो साधन हैं, जिनको यहां भी भगवान ने कहा ज्ञानम ज्ञेयम, उसको बतलाया। अब आगे भगवान ने उस ज्ञान से जिसकी प्राप्ति होनी है, जो ज्ञेय है, उसका यहां निरूपण किया। इस ज्ञेय की प्राप्ति करने के बाद जब मद्भावायोपपद्यते, परमात्मा से आप एक हो गए, तो फिर अब आगे कहां जाओगे? परमात्मा से जब तक अलग हैं तभी तक कहीं जाना है, जब तद्रूप हो गए तो कहां जाना है? इसलिए इसको ही चरम लक्ष्य कहा। प्रारंभ किया था आप लोगों का कि एक ही ब्रह्म अज्ञात होता है, ज्ञेय होता है और ज्ञात होता है। अर्थात संसार के अंदर सिवाय उस परमात्म तत्व के किसी भी हालत में, जिस समय बंधन अवस्था है उस समय में भी परमात्मा से तुम दूर नहीं हो, तुम हमेशा ही उसमें निवास कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि अभी हम परमात्मा से दूर हैं और फिर हमको वो मिलेगा। हम तो निरंतर उसकी गोदी में है, वो हमको निरंतर सहला रहा है, परंतु हमारा ध्यान इधर उधर है, इसलिए हमारे लिए लगता है वह अज्ञात है। जैसे ही हम वृत्तियों को उधर से हटा करके जो हमको पुष्ट कर रहा है, जो हमको जीवन के प्रत्येक क्षण में प्राण दे रहा है उसकी तरफ दृष्टि करते हैं, तब वही ज्ञान गम्य हो जाता है। इस ज्ञान गम्यता को आप लोग सब प्राप्त करें, यही नवरात्रि का आशीर्वाद है। यहाँ के इस सारे कार्यक्रम को करने में हमारे राम कुमार माहेश्वरी जी और इनके पुत्र प्रमोद कुमार, इन्होंने बड़ा परिश्रम किया। जो यहाँ भजन और कीर्तन इत्यादि हुआ उसको सब अमृत गीतिका के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने किया। स्थान की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा परिश्रम हमारे दीवान रघुनाथ सहाय जी ने किया और रात दिन यहां व्यवस्था के अंदर ओम प्रकाश मूलचंदानी लगा रहा। ये सभी इस ज्ञानगम्य अवस्था को प्राप्त करें, यही आशीर्वाद है। और इन सब का प्रयत्न तभी सफल हुआ जब आप लोग आए सुनने वाले, नहीं तो सारी व्यवस्था कर लेते और आप लोग नहीं होते तो क्या होता। और यहाँ जो बिड़ला मंदिर के जितने कार्यकर्ता हैं, यहाँ की सारी व्यवस्था को देखना करना, उसमें उनका पूरा सहयोग हुआ। इसलिए ये सभी उस ज्ञान गम्य परमात्मा को प्राप्त करें, यही आशीर्वाद है। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः नो विर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।